एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जो ऊपर से देखने में शायद थोड़ी पुरानी लगे, 1954
हाँ,
की है।
हाँ,
लेकिन जिसकी बातें आज इस डिजिटल जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं डैरिल हफ की क्लासिक किताब हाउ टू लाई विद स्टैटिस्टिक्स,
यानी आंकड़ों से झूठ कैसे बोलें।
हाँ, नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है।
सही कहा, हम सब आज डेटा से घिरे हुए हैं, है ना,
हर तरफ,
खबरों में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया फीड्स पर, यहाँ तक के ऑफिस प्रेजेंटेशंस में भी। हर तरफ नंबर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स।
बिल्कुल।
और ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे ये आंकड़े जो इतने इतने भरोसेमंद और सच्चे लगते हैं,
हाँ, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लगते हैं,
असल में वो सच को छिपाने या घुमाने फिराने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।
ये एक तरह से हमें, मतलब, आंकड़ों की दुनिया में चालाकी से बचने का हुनर सिखाती है।
हाँ,
ये बताती है कि कैसे पहचाने जब कोई हमें नंबर्स के जरिए उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हो।
तो चलिए सबसे पहले इस किताब के लेखक डैरिल हफ के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो कोई, मतलब, पीएचडी वाले प्रोफेसर या गणित के जादूगर नहीं थे।
हाँ, ये जानना जरूरी है। उनका बैकग्राउंड असल में पत्रकारिता और लिखने पढ़ने का था।
अच्छा।
उन्होंने बेटर होम्स एंड गार्डन्स जैसी मैगजीन के लिए भी काम किया। कुछ लोग उन्हें सांख्यिकीविद कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें आंकड़ों की समझ तो थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी आम आदमी की भाषा में बात करना। वो किताबी ज्ञान से ज्यादा असल दुनिया पर ध्यान देते थे।
बिल्कुल, उनकी नजर इस बात पर थी कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आंकड़ों का इस्तेमाल या कहीं दुरुपयोग कैसे करते हैं।
सही, विज्ञापनों में, राजनीति में,
बहसों में। और फिर उन्होंने इन चालाकियों को पकड़ा और मजेदार आसान भाषा में समझाया।
उनका नजरिया एक जागरूक नागरिक का था जो चाहता था कि आम लोग भी आंकड़ों के खेल को समझ सकें।
हाँ,
इसीलिए उनकी लिखने की शैली सीधी, सरल और थोड़ी मजाकिया है। उन्होंने आंकड़ों जैसे सूखे और डराने वाले विषय को भी पढ़ने लायक बना दिया।
अब आते हैं किताब पर। इसका मकसद क्या है? जैसा नाम से ही लगता है, ये कोई झूठ डोलने की गाइड नहीं है।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि झूठ से बचने की ढाल है।
हाँ, ये आंकड़ों के धोखे के खिलाफ एक तरह का डिफेंस मैनुअल है। ये उन तरीकों को उजागर करती है जिनसे नंबर्स को तोड़ मरोड़कर हमें गुमराह किया जा सकता है। किताब का मूल मंत्र है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, पर झूठे लोग आंकड़े जरूर गढ़ते हैं।
और हफ कहते हैं कि ज्यादातर धोखा किसी मुश्किल गणित के फॉर्मूले से नहीं होता,
नहीं,
बल्कि बड़ी चालाकी से की गई प्रेजेंटेशन, अधूरे सच और भाषा के खेल से होता है। ये किताब धीरे धीरे आंकड़ों पर हमारे अंधे भरोसे को तोड़ती है।
हाँ, ये हमें सिखाती है कि कैसे सैंपल चुनने में गड़बड़ी हो सकती है, औसत का क्या मतलब निकाला जा सकता
क्या
है,
क्या छुपाया जा सकता है, कौन सी जानकारी गायब की जा सकती है,
ग्राफ कैसे धोखा दे सकते हैं और सोचने में क्या गलतियां हो सकती
हैं। किताब का लक्ष्य हमें शक्की बनाना नहीं बल्कि समझदार बनाना है, ताकि हम असली जानकारी और आंकड़ों के जरिए की जा रही चालाकी, जिसे हम स्टैटिस्टिक्युलेशन कहते हैं,
स्टैटिस्टिक्युलेशन
अच्छा शब्द है,
हाँ,
उसके बीच फर्क कर सकें।
तो चलिए इन चालाकियों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहली और बड़ी गड़बड़ कहाँ हो सकती है?
हफ कहते हैं सैंपल चुनने में ही।
बिल्कुल,
यानी आप जानकारी किससे इकट्ठा कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये है द सैंपल विद द बिल्ट इन बायस, यानी पहले से तय पक्षपात वाला नमूना। सोचिए, अगर आप सिर्फ अमीर लोगों से पूछें कि देश की आर्थिक हालत कैसी है, तो जवाब शायद असलियत से बहुत अलग होगा, है ना?
हाँ, जाहिर है।
अगर आपका सैंपल ही पूरी आबादी का सही अक्स नहीं है, तो सारे नतीजे बेकार हैं।
इसका क्लासिक उदाहरण वो 1936 का लिटरेरी डाइजेस्ट पोल है।
हाँ, वो मशहूर किस्सा है।
उन्होंने लाखों लोगों को सर्वे भेजा और नतीजा निकाला कि चुनाव एक उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन असल में दूसरा उम्मीदवार भारी बहुमत से जीता। क्यों?
क्योंकि सर्वे उन लोगों को भेजा गया जिनके नाम टेलीफोन डायरेक्टरी या क्लब मेंबरशिप लिस्ट में थे।
अच्छा।
यानी उस जमाने के अमीर लोग। गरीब वोटरों की राय तो पूछी ही नहीं गई।
तो सैंपल ही बायस था।
बिल्कुल। तो पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, ये जानकारी किससे ली गई है? क्या वो लोग सच में उन सब लोगों जैसे हैं जिनके बारे में नतीजा निकाला जा रहा है, या सैंपल चुनने में ही कोई झुकाव है?
अच्छा, मान लीजिए सैंपल ठीक भी चुन लिया, फिर भी धोखा हो सकता है सिर्फ औसत शब्द का इस्तेमाल करके।
हाँ हाँ,
ये है द वेल चोजन एवरेज, यानी सोच समझकर चुना गया औसत।
हाँ, ये बहुत आम है। औसत के असल में तीन मतलब होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन यानी सबका जोड़ बटे कुल संख्या, मीडियन यानी लाइन में लगे मानों में बीच वाला मान, और मोड यानी वो मान जो सबसे ज्यादा बार आए।
आप खेल देखिए, मान लीजिए एक कंपनी में 10 कर्मचारी 20,000 कमाते हैं और बॉस 5,00,000 कमाता है,
ठीक है,
मीन या औसत वेतन निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, शायद 60-70 हजार।
हाँ, क्योंकि वो बॉस की सैलरी उसे ऊपर खींच लेगी।
बिल्कुल, लगेगा कि कंपनी सबको बहुत अच्छा पैसा देती है।
लेकिन अगर मीडियन देखेंगे यानी बीच वाले कर्मचारी का वेतन, तो वो 20,000 ही होगा और मोड भी 20,000 होगा।
सही,
तो कंपनी अगर अच्छा दिखना चाहेगी तो मीन बताएगी,
और अगर कोई दिखाना चाहे कि कर्मचारियों का वेतन कम है तो मीडियन या मोड बताएगा।
डेटा वही, कहानी अलग।
तो जब भी कोई औसत बताए पूछना जरूरी है, भाई साहब ये कौन सा वाला औसत है, मीन, मीडियन या मोड, और आपने ये वाला क्यों चुना।
सही सवाल है। अच्छा, आंकड़ों के खेल में एक और बड़ा हथियार है जानकारी छिपाना। ये है द लिटिल फिगर्स दैट आर नॉट देयर, यानी वो छोटे आंकड़े जो गायब हैं।
मतलब जो बताया जा रहा है वो तकनीकी रूप से शायद सही हो।
हाँ, टेक्निकली करेक्ट,
लेकिन अधूरी जानकारी के कारण भ्रामक हो। जैसे वो मशहूर दावा, 5 में से 4 डेंटिस्ट सुझाते हैं, सुनने में बहुत दमदार लगता है,
बहुत ज्यादा,
पर अगर ये सिर्फ 5 ही डेंटिस्ट से पूछा गया हो
तो क्या मतलब है इसका,
क्या ये वाकई कुछ साबित करता है।
या फिर चुनावी पोल में बताते हैं कि एक पार्टी को 51% और दूसरी को 49% वोट मिलने का अनुमान है।
हाँ, ये तो बहुत करीब लगता है।
लेकिन अगर त्रुटि की गुंजाइश, मार्जिन ऑफ एरर 3% है, तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टियां असल में बराबर हो सकती हैं।
अच्छा,
ये मार्जिन ऑफ एरर अक्सर गायब होता है।
और परिभाषाएं, कोई हैंड वॉश कहे 99% कीटाणुओं को मारे।
हाँ, कौन से कीटाणु, कहां, लैब में या असल हाथ पर, कितने समय में, ये सब गायब।
तो सिर्फ दिए गए नंबर पर मत जाइए, ये भी देखिए कि क्या छुपाया जा रहा है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, मच अडो अबाउट प्रैक्टिकली नथिंग,
यानी राई का पहाड़ बनाना।
हाँ, कई बार दो चीजों में अंतर इतना मामूली होता है कि उसका असल जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई बड़ी खोज हो गई हो।
जैसे कोई तेल कंपनी दावा करे कि उनका पेट्रोल 0.1 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा माइलेज देता है।
हाँ, हो सकता है ये सच हो, पर क्या इससे आपकी जेब पर कोई फर्क पड़ेगा, शायद नहीं,
शायद बिल्कुल नहीं। या आईक्यू टेस्ट में किसी का स्कोर 101 आए और किसी का 99।
हाँ, क्या इसका मतलब है कि एक बहुत बुद्धिमान है और दूसरा कम, नहीं, ये मामूली अंतर है, स्टेटिस्टिकल नॉइज है।
विज्ञापनों में ये बहुत होता है, हमारी टूथपेस्ट में एक्स ज्यादा है।
कितना ज्यादा, क्या उस ज्यादा से कोई फर्क पड़ता है, तो हमेशा पूछिए क्या ये अंतर वाकई मायने रखता है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है।
अच्छा, ये तो हुई नंबरों की बाजीगरी, लेकिन हम बताते हैं कि आंखों को धोखा देना और भी आसान है।
हाँ, विजुअल्स,
ग्राफ और चार्ट्स के जरिए। ये है द गी विज ग्राफ, यानी वाह वाह करा देने वाला ग्राफ।
इसका सबसे आम तरीका है ग्राफ के वाई अक्ष, वर्टिकल लाइन को काट देना, मतलब ट्रंकेट कर देना।
अच्छा, कैसे?
मान लीजिए कंपनी का मुनाफा 1 करोड़ से बढ़कर 1.1 करोड़ हुआ, यानी 10% की बढ़त।
ठीक है,
अगर आप ग्राफ 0 से शुरू करेंगे तो ये एक हल्की सी चढ़ाई दिखेगी, नॉर्मल सी।
लेकिन अगर आप वाई अक्ष 90,00,000 से शुरू करें
तो
वही 10% की बढ़त अचानक रॉकेट की तरह ऊपर जाती हुई दिखेगी।
अरे वाह,
देखने वाले को लगेगा कि कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया, जबकि असल बढ़त उतनी ही है, 10%,
है ना, कमाल का धोखा। इसीलिए कोई भी ग्राफ देखते ही उसके आकार पर कूदने से पहले हमेशा उसके अक्ष, एक्सिस जरूर देखें।
खासकर वाई अक्ष कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से या कहीं और से।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक और तरीका है द 1-डायमेंशनल पिक्चर,
एक आयामी तस्वीर।
हाँ, इसमें डेटा दिखाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, जैसे पैसों के थैले या आदमी।
अच्छा, पिक्टोग्राम जैसे।
हाँ, मान लीजिए आपको दिखाना है कि आमदनी 2 गुनी हो गई, आपने पैसों के थैले की तस्वीर की लंबाई और चौड़ाई दोनों 2 गुनी कर दी।
ठीक है, डबल साइज।
अब देखने वाले को क्या लगेगा, थैला सिर्फ 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बड़ा दिखेगा।
4 गुना, कैसे?
क्योंकि हमारी आंखें लंबाई नहीं, क्षेत्रफल, एरिया देखती हैं। लंबाई चौड़ाई 2 गुनी मतलब क्षेत्रफल 4 गुना।
ओहो,
अगर 3D तस्वीर हुई तो 8 गुना बड़ा दिखेगा, वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा।
यानी डेटा सिर्फ 2 गुना हुआ पर असर 4 या 8 गुने का पड़ा। वाह, ये तो बड़ी चालाकी है।
बहुत सटल है।
अब आते हैं सोचने के तरीके में गड़बड़ी पर। एक है द सेमी अटैच्ड फिगर, यानी आधा अधूरा जुड़ा आंकड़ा।
इसमें होता यह है कि एक सच्ची बात या आंकड़ा बताया जाता है,
ठीक है,
और फिर उससे एक ऐसा नतीजा जोड़ दिया जाता है जिसका उस आंकड़े से कोई सीधा लेना देना नहीं होता।
जैसे?
जैसे कोई कंपनी कहे हमारे लैब टेस्ट में ये दवा एक टेस्ट ट्यूब में 30,000 कीटाणुओं को मार देती है।
ये बात शायद सच हो, लेकिन फिर वो इशारा करते हैं कि इसलिए ये दवा सर्दी जुकाम ठीक कर देगी।
अच्छा,
पर टेस्ट ट्यूब में कीटाणु मारना और इंसान का जुकाम ठीक करना
दो बिल्कुल अलग बातें हैं, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में ये दोनों बातें जुड़ जाती हैं।
बैट एंड स्विच जैसा है ये।
तो हमेशा देखिए कि जो सबूत दिया जा रहा है क्या वो वाकई उसी बात का सबूत है जिसका दावा किया जा रहा है, या कहीं विषय तो नहीं बदल दिया गया। सही। और एक सबसे आम तार्किक गलती है पोस्ट हॉक राइट्स अगेन।
लैटिन में कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक।
हाँ, मतलब इसके बाद हुआ इसलिए इसी के कारण हुआ।
ये मान लेना कि अगर दो चीजें एक के बाद एक होती हैं तो पहली चीज ने ही दूसरी को किया होगा।
हाँ, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और शहरों में जुर्म भी।
तो क्या आइसक्रीम खाने से लोग अपराधी बन जाते हैं?
हाँ हाँ, जाहिर है। नहीं,
नहीं,
शायद कोई तीसरा कारण हो, जैसे गर्म मौसम जो दोनों को बढ़ाता हो। इसी को कहते हैं सह संबंध का मतलब कारण होना नहीं।
Correlation does not imply causation.
ये बहुत जरूरी है।
हाँ, दो चीजों का साथ साथ होना ये साबित नहीं करता कि एक ने दूसरे को पैदा किया। ये गलती खबरों में, बहसों में हर जगह दिखती है और इससे बहुत गलत फहमियां पैदा होती हैं।
और आखिर में हफी बात करते हैं स्टेटिस्टिकुलेट करने की कला की।
हाँ, उनका गढ़ा शब्द है ये
स्टेटिस्टिकुलेट।
इसका मतलब है आंकड़ों की भारी भरकम भाषा, मुश्किल दिखने वाले चार्ट और दशमलव के बाद कई अंकों तक प्रिसिजन दिखाकर,
जैसे बहुत सटीक हैं। हाँ, लोगों को इतना प्रभावित या कंफ्यूज कर देना कि वो सवाल पूछने की हिम्मत ही ना करें, भले अंदर का डेटा कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जैसे कहना हमारे विश्लेषण के अनुसार प्रभाव 3.14159% है।
हाँ,
सुनने वाला सोचेगा भाई इन्हें तो बहुत पता है, क्या सवाल पूछे हम।
तो ये सब तो हुए धोखे के तरीके, लेकिन हेग हमें असहाय नहीं छोड़ते। किताब के आखिरी चैप्टर में वो बताते हैं कि इन सबसे बचे कैसे।
हाँ, हाउ टू टॉक बैक टू अ स्टैटिस्टिक,
यानी एक आंकड़े को जवाब कैसे दें।
और इसके लिए वो देते हैं 5 सवाल, एक तरह की मेंटल चेकलिस्ट।
अच्छा,
जो किसी भी आंकड़े या दावे का सामना करते वक्त काम आ सकती है। पहला, कौन कह रहा है,
Who says so?
स्रोत कौन है?
हाँ,
क्या कहने वाले का कोई स्वार्थ है, स्टडी किसने फंड की? दूसरा, उसे कैसे पता,
How does he know?
तरीका क्या था?
हाँ,
मेथोडोलॉजी क्या थी, सैंपल सही था, क्या वो वाकई ये जानने की स्थिति में है?
तीसरा, क्या गायब है,
What's missing?
जो नहीं बताया गया।
बिल्कुल, क्या मार्जिन ऑफ एरर बताया, सैंपल साइज, कौन सा औसत इस्तेमाल हुआ, पूरी कहानी बताई जा रही है या कुछ छुपाया जा रहा है।
चौथा,
क्या किसी ने विषय बदल दिया,
वो सेमी अटैच्ड फिगर वाली बात।
हाँ, क्या सबूत दावे से मेल खाता है या कहीं और ही ले जा रहे हैं बात को।
और पांचवा,
क्या ये समझ में आता है, क्या ये बात कॉमन सेंस के हिसाब से सही लगती है या कुछ ज्यादा ही अच्छा या बुरा लग रहा है सच होने के लिए, गट चेक।
ये 5 सवाल हमें सिर्फ जानकारी लेने वाले से, मतलब जानकारी पर सवाल उठाने वाला बना देते हैं।
बिल्कुल, एक्टिव क्रिटिकल थिंकर,
यही इस किताब का असली मकसद है।
पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक क्या निकलते हैं? पहला तो यही कि थोड़ा शक करना, सवाल पूछना बुरी बात नहीं है,
हेल्दी स्केप्टिसिज्म।
हाँ, आंकड़ों की इस दुनिया में ये एक जरूरी हुनर है, आंख बंद करके भरोसा करने से बेहतर है कि सवाल पूछें।
दूसरा, संदर्भ ही सब कुछ है, बिना संदर्भ के कोई भी नंबर बेमानी है।
बिल्कुल,
ये जानना कि नंबर कहाँ से आया, कैसे मापा गया, क्या छुपाया गया, ये बहुत जरूरी है। जैसे भारत में जब हम सुनते हैं कि अर्थव्यवस्था इतने प्रतिशत बढ़ी,
हाँ ये बहुत कॉमन है,
तो पूछना चाहिए किसकी तुलना में, पिछले साल से, पिछली तिमाही से, कौन सा सेक्टर बढ़ा, ये सवाल तस्वीर को साफ करते हैं।
तीसरा और शायद सबसे जरूरी, सहसंबंध कारण नहीं है,
इसे बार बार दोहराना चाहिए।
हाँ, सिर्फ इसलिए कि दो चीजें साथ हो रही हैं, ये मत मान लीजिए कि एक ने दूसरे को किया, खासकर स्वास्थ्य या सामाजिक मुद्दों पर आई खबरों में ये देखना बहुत जरूरी है।
चौथा, हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, ग्राफ और विजुअल्स बहुत असरदार होते हैं,
बहुत पावरफुल,
लेकिन उनमें हेर फेर भी बहुत आसान है।
हाँ।
सिर्फ तस्वीर देखकर नतीजे पर ना कूदें।
और पांचवा, ये किताब हमें डराती नहीं बल्कि ताकत देती है, एम्पावर करती है।
हाँ,
आंकड़ों को समझना, उन पर सवाल उठाना हमें बेहतर नागरिक, बेहतर उपभोक्ता और ज्यादा जागरूक इंसान बनाता है।
इस किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे हफ कहते हैं कि आंकड़े एक गुप्त भाषा की तरह हैं,
हाँ,
जिसे लोग सच साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर असल में इसका इस्तेमाल सनसनी फैलाने, बातों को बढ़ाने चढ़ाने या कंफ्यूज करने के लिए भी होता है।
हाँ, और ये भी कि एक चालाकी से पेश किया गया आंकड़ा हिटलर के बड़े झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
क्यों?
क्योंकि उसमें सच का थोड़ा अंश होता है जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो आपको गुमराह करता है पर आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते।
अच्छा, और वो सेमी अटैच्ड फिगर वाली बात, अगर आप वो साबित नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं तो कुछ और साबित करके ऐसा दिखाइए कि दोनों एक ही बात है।
बिल्कुल, ये तो आजकल मार्केटिंग और राजनीति में खूब दिखता है,
हर जगह।
बिल्कुल, और वो सीधी सी बात सहसंबंध कारण नहीं है, इसे तो हमें स्कूल में ही सिखाना चाहिए।
सही कहा।
और आखिर में कि किसी आंकड़े की असली परीक्षा ये है कि क्या वो हमारी समझ बढ़ाता है या हमें और उलझा देता है, डज इट इन्फॉर्म और कन्फ्यूज।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? सोचिए, जब आप कोई खबर पढ़ते हैं जिसमें किसी सर्वे का जिक्र हो या चुनाव का पोल हो,
हाँ,
अब आप पूछ सकते हैं सैंपल साइज क्या था, सवाल कैसे पूछे गए थे, मार्जिन ऑफ एरर कितना है,
या जब कोई विज्ञापन देखें 75% तक की छूट।
हाँ, वो तक
आप सोच सकते हैं, तक मतलब शायद सिर्फ एक दो चीजों पर 75% हो, बाकी पर कम, या 10 में से 9 डॉक्टर सुझाते हैं, कौन से डॉक्टर, क्या उन्हें और विकल्प दिए गए थे, सर्वे किसने करवाया।
स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें पढ़ते हुए, क्या ये स्टडी इंसानों पर हुई या चूहों पर, कितने लोगों पर हुई, क्या नतीजा वाकई इतना बड़ा था कि मेरी जीवन शैली बदल दे,
या ये सिर्फ एक शुरुआती संकेत है, बहुत छोटे सैंपल साइज पर आधारित तो नहीं।
सोशल मीडिया पर वायरल होते ग्राफ या आंकड़े,
हाँ, वो तो सबसे खतरनाक है।
रुकिए, शेयर करने से पहले उन 5 सवालों को याद कीजिए। स्रोत क्या है? क्या अक्षर सही दिख रहे हैं? क्या ये बात विश्वसनीय लग रही है?
बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर ये किताब हमें आंकड़ों से डरना नहीं बल्कि उन्हें समझना और उनसे सवाल करना सिखाती है।
हाँ।
ये बताती है कि नंबर्स खुद सच या झूठ नहीं होते, उन्हें पेश करने वाला उन्हें कहानी का रूप देता है। सांख्यिकीय साक्षरता,
स्टैटिस्टिकल लिटरेसी।
हाँ, आंकड़ों को समझने की क्षमता आज के जमाने में खुद को बचाने का एक तरीका है।
बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हफ की ये बातें 70 साल बाद भी उतनी ही सच हैं, शायद और भी ज्यादा।
हाँ, ये कमाल की बात है,
क्योंकि आज हमारे पास डेटा पहले से कहीं ज्यादा है और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने के तरीके भी और ज्यादा शातिर हो गए हैं।
सही।
हफ के वो 5 सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1954 में थे। ये क्लासिक है जो हमें याद दिलाती है कि आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने जरूरी हैं।
वाकई।
और शायद एक सोचने वाली बात ये भी है कि आज जब AI खुद ही चार्ट्स और विजुअल्स बना सकता है, ये नया चैलेंज है,
तब ये जानना और भी जरूरी हो गया है कि उन पर भरोसा करने से पहले क्या सवाल पूछें।
बिल्कुल, क्रिटिकल थिंकिंग और भी जरूरी हो गई है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।